समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी सुनने वालों को आपके अपने दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार बल का नमस्कार। और आज मेरे साथ हैं अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 28th of October. Before we begin with the headlines, greetings to all our listeners on the final day of Chhat Puja. And now the headlines. President Draupadi Murmu will deliver the keynote address at the 8th International Solar Alliance ISA Assembly at Bharat Mandapam in New Delhi today. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi will address the inaugural session of ISA today. The four-day global event is being attended by 124 countries and over 40 ministers across the globe. This event brought the global community together to deepen cooperation and accelerate solar adoption for a brighter and sustainable future. During the sessions, the member countries will be reviewing progress, addressing challenges, and aligning actions toward one vision, affordable solar energy for all.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत क्विज कंपटीशन में भाग लेने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दूसरा विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद देश के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने कहा कि युवाओं के विचार और अंतर्दृष्टि विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लोग इस महीने की 31 तारीख तक क्विज में भाग ले सकते हैं। विकसित भारत क्विज कॉम्पिटिशन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि SIR के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। श्री कुमार ने बताया कि गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अगले साल 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जाएगी। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई हैं। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र वितरित करेंगे। इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held meetings with Australian Prime Minister Anthony Albanese and New Zealand Prime Minister Christopher Luxon yesterday. They had wide-ranging discussions on bilateral ties. In a social media post, External Affairs Minister welcomed the commitment of Prime Minister Luxon to advance India-New Zealand bilateral cooperation and nurture a free and open Indo-Pacific, and said it was nice to meet Australia's Prime Minister Albanese. Dr. Jaishankar also met his Japanese counterpart, Motegi Toshimitsu, as also his counterparts from Malaysia, Brazil and Brunei, and discussed regional issues. The meetings took place on the sidelines of the annual summit of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, and the 20th East Asia Summit 2025. Indian wrestler Sujit Kalkar won the gold medal in the men's freestyle 65kg title clash at the Under-23 World Championships with a 10-0 victory over Uzbekistan's Umid John Jalolov in Serbia yesterday. The contest lasted 4 minutes and 54 seconds as the referee declared the Indian winner. It was victory by superiority for Kalkal, who dominated the title clash against his Uzbek opponent. Prior to this, Kalkal had never won a world title but had two under-23 Asian titles and one under-20 Asian championship gold.
और अनिता, अब खेल खबरों के बाद हम अपने श्रोताओं को बता दें कि चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और चेन्नई से 420 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, यनम, आसपास के दक्षिणी ओडिशा तटों और छत्तीसगढ़ के लिए कल तक रेड अलर्ट जारी किया है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तूफान के आज रात मचिलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवा की गति के साथ पार करने की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 29 तारीख तक इन जगहों पर ना जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी तट रेलवे और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज के लिए क्षेत्र में कई सेवाएं रद्द कर दी हैं। ओडिशा में भी राज्य सरकार ने तूफान से निपटने की तैयारियों को बढ़ा दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चक्रवात आश्रय केंद्रों में भेजा जा रहा है। मोन्था के प्रभाव के कारण ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में कल से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 दक्षिणी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और रेलवे ने 43 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा देश भर में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ सम्पन्न हो गया। आज सुबह श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ये वैदिक काल से चला आ रहा महापर्व है। पर्व वैदिक ऋग्वेद में वर्णित सूर्य तथा उषा पूजन और सनातन परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन का एक उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। ये पर्व विशेष तौर पर सूर्य की उपासना का पर्व है। भारत में सूर्यदेव की पूजा ऋग्वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य उपासना का जिक्र विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। बिहार से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि छठ के मधुर लोक गीतों की गूंज के बीच छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर राज्य में गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित अन्य प्रमुख नदियों के किनारे बने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।
बिहार में आज सुबह विभिन्न छठ घाटों पर लाखों की संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को कमर भर पानी में खड़े होकर उषाकालीन अर्घ्य अर्पित किया। उसके बाद छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर पारण किया और उनका 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत भी संपन्न हुआ। छठ घाटों पर इस दौरान लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। राजधानी पटना में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी के किनारे बने विभिन्न घाटों पर भगवान सूर्य को और छठी माता को अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद जिले के देव, नालंदा के ओंगारी धाम, पटना जिले के ओलार्क, नवादा के हरिया सूर्य मंदिर सहित विभिन्न सूर्य मंदिरों पर भी आयोजित छठ महोत्सव का आज समापन हो गया।
श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले भाग में अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले हाल दिल्ली के समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित छठ पूजा समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने श्रद्धालुओं के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कल छठ पर्व के संध्या अर्घ्य पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव के आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीयू कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष और जनसंपर्क अधिकारी अनूप लाठर ने बताया कि इसका आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से किया जाएगा। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में एसिड अटैक के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि आयोग पीड़िता के लिए चिकित्सा उपचार परामर्श और पुनर्वास सुनिश्चित कर रहा है।
आयोग ने उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, ये सारे कॉम्पेंसेशन, सारी चीज देखते हैं पुलिस के साथ बात करके। और जैसे कि जो प्रीपरेटर्स है जो एसिड अटैक किए हैं, अगर वो उसके जैसे जल्दी कानून से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ठीक से हो। दिस इज अगेन अंडर इन्वेस्टिगेशन।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 47 लाख रूपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को एक टेलीग्राम समूह के माध्यम से आज खरीदें कल बेचें जैसी स्टॉक ट्रेडिंग योजनाओं के माध्यम से ठगते थे। पुलिस ने बताया कि टॉम नाम का एक विदेशी नागरिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के नए विंग का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन समता, सेवा और सहयोग के युग प्रणेता थे, जिन्होंने समाज में समान अवसर और साझा संस्कृति का संदेश दिया। और अब रुक करते हैं मुंबई के समाचारों का। बृहन मुंबई नगर निगम ने दीपावली के दौरान निकले लगभग 3000 मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरे का निपटान किया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार बीएमसी के अपशिष्ट विभाग ने त्योहारी सीजन के दौरान मुंबई महानगर में उत्पन्न अतिरिक्त कचरे का प्रभावी ढंग से निपटान किया। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम 2 नवंबर को संपन्न होने वाले कार्तिकी एकादशी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को पंढरपुर ले जाने के लिए राज्यभर में 1150 अतिरिक्त बसें चलाएगा। परिवहन मंत्री और निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने घोषणा की। ये अतिरिक्त बसें 3 नवंबर तक पंढरपुर स्थित चंद्रभागा बस स्टैंड से चलेंगी। और अगर बात करें कोलकाता के समाचारों की, तो पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 67 आईएएस और 315 पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कार्यकारी अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, उप मजिस्ट्रेट और उप कलेक्टर के रूप में कार्यरत अधिकारियों को नए स्थानों और विभागों में तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच इन तबादलों से राजनीतिक अटकलें पैदा हो गई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमित प्रक्रिया का ये तबादले एक हिस्सा हैं। और अब चेन्नई और अन्य महानगरों की खबरों का हाल सुना रही हैं अनीता।
The Bureau of Indian Standards organized a mela at Coimbatore. It was an awareness of the activities of the BIS to the general public and also to the students. Competitions were also held for students during the meet. The importance of the marking of the standards and the responsibility of the seller in manufacturing standard products was explained to the students and the public. Several pavilions on the various requirements of getting the mark and also how to find out the fake from the real products were explained in detail. BIS Care app was also promoted for the benefit of the consumers. The Madras High Court has directed the state government to prepare an SOP in 10 days for granting permissions for public meetings organized by political parties and other organizations. The directive aims to streamline approvals without hindering meetings at non-highway locations. The first bench of Chief Justice Manindra Mohan Srivastava and Justice G. Arulmurugan said that the order shall not be an impediment for the authorities to consider applications seeking permission for public meetings in places other than state or national highways. The bench said that if anyone approaches the court alleging delay in disposing of such applications, the court will be restrained to pass orders. Talking about Bengaluru, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has assured to increase the exports quota from 2 to 3% in the police department. He was speaking after inaugurating the Yonex Sunrise Chief Minister's Bangalore India International Challenge Badminton Tournament in Bengaluru yesterday. He promised to increase the sports quota in the recruitment of police officials of Deputy SP and sub-inspector ranks and also for police constables. The government also awards prize money for Karnataka medalists from Olympics. Telangana Raj Bhavan has been illuminated in pink for the sixth consecutive year to mark the International Breast Cancer Awareness Month and to sustain the symbolic gesture. A communique informed that the initiative, organized in collaboration with the Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation, aimed at spreading awareness about early detection and to inspire hope, resilience and solidarity in the ongoing fight against breast cancer. Telangana Governor Jishnu Dev Varma commended the foundation on the occasion for its dedicated 18-year-long contribution to breast cancer education and advocacy. The governor underlined that early detection remains the cornerstone of saving lives and called for concerted efforts to reach every section of society with awareness initiatives. At the National Unity Day Ekta Divas Parade on Friday, that is 31st of October, a special Border Security Force BSF contingent of indigenous canine squad, canines, will be on display, showcasing discipline, agility and India's growing confidence in native breeds.
The Ekta Divas Parade will also feature a dog training demonstration showcasing tactical skills and operational excellence, a living symbol of India's self-reliant and proud canine force. Prime Minister Narendra Modi has hailed the increased inclusion of indigenous dogs in BSF, CRPF in the 127th episode of his Mann Ki Baat program on Akashvani on Sunday. Mr. Modi mentioned about a dog named Rhea, the Modi Hoolhound of BSF, who created history at the All India Police Duty Meet 2024, becoming the first Indian breed to win best in tracker trade and best dog of the meet.
साथियों, पिछले वर्ष लखनऊ में All India Police Duty Meet का आयोजन हुआ था. उस समय रिया नाम के श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. ये एक मुदोल हाउंड है जिसे BSF ने ट्रेन किया है. रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता. BSF और CRPF ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ.
Director General of BSF Daljeet Singh Chaudhary said indigenous dog breeds Rampur Hounds and Moody Hole Hounds will demonstrate their skills at the Ekta Divas Parade. He said these breeds have made significant contributions as force multipliers during BSF operations, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat.
Swadeshi nasal ke shwan dal Rampur Hounds aur Moody Hole Hounds apne kaushal ka pradarshan karenge. हम गर्व से कह सकते हैं कि इन स्वदेशी नस्लों ने बीएसएफ एवं अन्य बलों में ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है.
Director of BSF Academy, Tekanpur, Dr. Shamsher Singh, said the Prime Minister had discussed about Indian breeds of dogs in the Mann Ki Baat program. He said, taking inspiration from it, BSF Academy initiated breeding and training programs. Until now, 150 Indian breed dogs are deployed at the borders.
BSF Academy ne Bharatiya nasal ke Mudhol Hound aur Rampur Hound ka breeding aur training ka program ki shuruaat ki. BSF ne abhi tak 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं.
फरहाद सवेरे विद अनुपम मिश्र, प्रिया मंडल, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली.
And now the weather from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 25 degrees Celsius. Hyderabad is also expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius. And now for a weather from Delhi, Mumbai and Kolkata, Mukesh.
श्रोता मित्र, राजधानी दिल्ली में सुबह के समय बादल और धुंध छाए रहने का अनुमान है. शहर में दिन में एक या दो बार हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में बिजली गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब अगर आज के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी हम लेते हैं अनीता से।
Yeah, we begin with 1492 when Christopher Columbus sighted Cuba and claimed it for Spain. In the year 1538, the first university in the Americas, the Universidad Santo Tomas de Aquino, was established in Santo Domingo. In the year 1831, English chemist and physicist demonstrated his dynamo, an electric generator, in which was based on his discovery of electromagnetic induction. This was the first time it was shown that a changing magnetic field can create an electric current. And in the year 1886, the Statue of Liberty was dedicated by President Grover Cleveland. And the same day, New York City held its first ticker tape parade to celebrate the event.
श्रोताओं, 1918 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। और 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ। इसके अगले साल 1955 में मिस्र और सऊदी अरब ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए।
In the year 1973, Indian Institute of Management Bangalore, designed by architect B.V. Doshi, was inaugurated.
वर्ष 1998 में इंटरपोल की 67वीं आमसभा अत्याधुनिक तकनीक, आतंकवाद और अन्य आधुनिक संगठित अपराधों से निपटने की एक नई रणनीति के साथ आज ही के दिन समाप्त हुई थी।
एंड नाउ वी रिमेम्बर पीपल हु वर आइदर बोर्न दिस डे और हु पास्ड अवे टुडे। वी बिगिन दिस सेगमेंट बाय रिमेम्बरिंग पोटर वेन वैगनर। On his death anniversary, he passed away on this day in 2007. The American country music singer, known for his flashy and manual suits and blonde pompadour, in 1967 he introduced the singer Dolly Parton on his television show, The Porter Wagner Show. She became part of a well-known vocal duo with him from late 1960s to early 1970s. Known as Mr. Grand Ole Opry, Wagner charted 81 singles from 1954 to 83. He was elected to the Country Music Hall of Fame in the year 2002. We are listening to a snippet of a song from sung by him from We'll Get Ahead Someday.
Well, my car's in the shop, my shoes wore out, got a bill from the doctor today. And the landlord said you'll get out tomorrow if you don't get me some pay. But I'll get ahead.
He also won 3 Grammy Awards for gospel recordings.
आज पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की। इनका नाम व्यंग्य लेखन के अग्रणी साहित्यकारों में शुमार है। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की और 1983 में उन्होंने वे भारतीय प्रशासनिक सेवा से अनुमोदित हुए। उनका विधिवत लेखन अगर बात करें तो 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय भी आकार लेने लगता है। 10 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 9 व्यंग्य संग्रह, 2 विनिबंध, 1 आलोचना पुस्तक और इसके अलावा भी पता नहीं बहुत कुछ उनकी रचनाओं में शामिल है। उनका पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी 1998 में छपा। उन्हें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, यश भारती, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, लोहिया सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और शरद जोशी सम्मान जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
Today is also the death anniversary of Friedrich Max Müller. He passed away on this day in 1900, the German-born British comparative philologist and Orientalist. He was one of the founders of the Western academic disciplines of Indology and Religious Studies. Müller wrote both scholarly and popular works on the subject of Indology. He directed the preparation of the Sacred Books of the East, a 50-volume set of English translations, which continued after his death. Müller became a professor at Oxford University, first of modern languages, and then of comparative philology in a position founded for him, which he held for the rest of his life. Early in his career, he held strong views on India, believing that it needed to be transformed by Christianity. Later, his view became more nuanced, championing ancient Sanskrit literature and India more generally.
श्रोताओं, आज जयंती आज पुण्यतिथि है हिंदी के एक और महान साहित्यकार और सुप्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव की। वे हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादक और लोकप्रिय उपन्यासकार थे। जिस दौर में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं कमजोर पड़ रही थीं, उस दौर में भी हंस का लगातार प्रकाशन राजेंद्र यादव की वजह से ही संपन्न हो पाया। उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं पर उनकी समान पकड़ थी। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अनुभव और अभिव्यक्ति और कांटे की बात उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। और आज जयंती है सुप्रसिद्ध गीतकार और शायर अनजान की। इनका वास्तविक नाम लालजी पांडे था। अनजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। खई के पान बनारस वाला, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और रोते हुए आते हैं सब जैसे, ना जाने कितने ही सदाबहार गीत अनजान ने लिखे और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके गीत काफी लोकप्रिय रहे। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली। अनजान ने अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सिने करियर में लगभग 200 फिल्मों के लिए गीत लिखे। आइए सुनते हैं उनके लिखे गीतों की ये मेडली।
खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का।
Having penned over 1500 songs for more than 300 films, he's remembered for tracks from his frequent collaborations with composers like Kalyan Ji Anandji, Lakshmi Pyare, R.D. Burman and Bhappi Lahiri. He actually got fame after the film Godaan and with the song Aapke Haseen Rukh Pe.
Aapke haseen rukh se aaj naya noor hai, mera dil machal gaya to mera kya usoor hai।
वर्ष 1989 में सुल्तान अहमद की फिल्म दाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा ये गीत आज भी सुनने वालों की आंखों को नम कर देता है। गीत आपके सामने प्रस्तुत है।
बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है,
Today is the birthday of Julia Fiona Roberts, the American actress known for her leading roles across various genres. She has received multiple accolades, including an Academy Award, a British Academy Film Award, 3 Golden Globes. She became known for portraying charming, relatable characters in romantic comedies and blockbusters before expanding into dramas, thrillers and independent films. I am playing a snippet of a song from which she got a major recognition, Pretty Woman, It Must Have Been Love.
श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार की मिट्टी के बने शरीर को गुरूर हो चला था कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान को कम कर देगी। इसी सुविचार के साथ मुकेश और अनीता को दीजिए अनुमति कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की.
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.